ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल और नेपालियों के हित एवं आर्थिक विकास के पक्ष में भारत के साथ समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन। यौन शोषण तथा व्यक्ति को जबरन गुम करने के आरोपित राम बहादुर बोमजन को प्रहरी केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने किया सार्वजनिक। बलात्कार मामले में दोषी पाए गए क्रिकेटर संदीप लामिछाने को 8 साल की जेल, जुर्माना और 5 लाख क्षतिपूर्ति भरवाने का जिला अदालत काठमांडू ने दिया आदेश। और भूटान में कल संपन्न चुनाव में लिबरल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को मिला स्पष्ट बहुमत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि भारत के साथ हुआ समझौता नेपाल और नेपालियों के व्यापक हितों और नेपाल के आर्थिक विकास के पक्ष में है। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति की आज हुई बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि नेपाल दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री के साथ किए गए समझौते नेपाल के हित में हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि सामुदायिक विकास को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं, विद्युत व्यापार और न्यानो सैटेलाइट संबंधी विषय में हुए समझौते नेपाल के हित में ही हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि इस बात पर कोई समझौता नहीं हुआ है कि भारत केवल भारतीय निवेश से ही नेपाल से बिजली खरीदेगा। प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया कि भारत सरकार के साथ किए गए समझौते ने नेपाल और भारत के बीच दीर्घकालीन बिजली व्यापार का द्वार खोल दिया है। आगे उन्होंने कहा कि पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना जल्द ही शुरू होगी। सरकार ने एनसेल के शेयर की खरीद बिक्री की जांच के लिए गठित समिति की अवधि माघ 15 गते तक बढ़ा दी है। कल हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार मंत्री रेखा शर्मा ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री देवी प्रकोप सहायता कोष से 2 अरब रुपए आपदा व्यवस्थापन कोष में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। मंत्री शर्मा ने कहा कि ये राशि भूकंप प्रभावित जिलों में खर्च की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युगांडा की राजधानी कानपाला में इस माघ 5 से 6 गते को होने वाले असंलग्न आंदोलन के सदस्य देशों के 19वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल गठन करने का भी निर्णय किया। सरकार द्वारा डेडिकेटेड और ट्रंक लाइन विवाद समाधान के छानबीन समिति बनाए जाने का नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ने स्वागत किया है। इसका उल्लेख महासंघ द्वारा जारी बयान में किया गया है। अपने बयान में महासंघ ने समस्या का दीर्घकालीन समाधान ढूंढने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेपाल पुलिस के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने राम बहादुर बोमजन के नाम से प्रसिद्ध रामलाल बोमजन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया। कल रात पुलिस ने 34 वर्षीय बोमजन को काठमांडू के बुढ़ानीलकंठ स्थित उनके अपने निजी निवास से गिरफ्तार किया। ये जानकारी सीआईबी प्रमुख एवं एआईजीपी किरण बज्राचार्य ने दी है। उन्होंने बताया कि बोमजन अपने घर के 4थे माले से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उनके पास से 30,92,000 नेपाली रुपए बराबर की विभिन्न 17 देशों की मुद्रा, उनके साथ लगभग 3,03,75,000 रुपए बरामद किए गए। गौरतलब है कि उनके खिलाफ यौन शोषण और विभिन्न आपराधिक मामलों में संलग्नता के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि विक्रम संवत 2071 श्रावण से हलखोरिया स्थित राम बहादुर के आश्रम में आनी के रूप में काम कर रही 22 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर सरलाही जिला अदालत से विक्रम संवत 2076 माघ 26 गते पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल से दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क के नवनियुक्त महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर ने शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति भवन में हुई भेंट में राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि सार्क के संस्थापक सदस्य तथा वर्तमान अध्यक्ष की हैसियत में नेपाल सदस्य राष्ट्रों के बीच एकता और एकबद्धता की भावना से सार्क की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि देश के दूर दराज के इलाकों में लोगों के जीवन को मुख्य धारा में लाने में नेपाल टेलीकॉम को अपनी सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। नेपाल टेलीकॉम द्वारा रुकुम पूर्व के रुकुमकोट और रुकुम पश्चिम के मुसीकोट में ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लिंक पहुंचाकर फोन, इंटरनेट और टेलीविजन के साथ FTTH सेवा का सिंह दरबार स्थित मंत्रालय से वर्चुअल उद्घाटन करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि आम नागरिकों तक टेलीकॉम सेवा का विस्तार करने के उद्देश्य से सरकार ने नेपाल टेलीकॉम की सेवा को 77 जिलों में जल्द विस्तार करने के हिसाब से काम किया जा रहा है। मंत्री शर्मा ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर सेवा की आसान पहुंच और विस्तार से आम नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। अब तक रुकुम पश्चिम जिला सहित 74 जिलों में नेपाल टेलीकॉम का ऑप्टिकल फाइबर सेवा का विस्तार किया जा चुका है। संसद के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति ने आज भी शिक्षा से संबंधित विभिन्न संघ संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विधेयक 2080 के विषय में चर्चा की। आज सिंह दरबार में समिति की हुई बैठक में शिक्षा संबंधी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिक्षा विधेयक में निःशुल्क शिक्षा की सुनिश्चितता और सामुदायिक विद्यालयों में सुधार और स्तरीय वृद्धि लगाये विषयों को समाविष्ट करने का सुझाव दिया। जिला अदालत काठमांडू ने बलात्कार मामले में दोषी पाए गए क्रिकेटर संदीप लामिछाने को 8 साल की जेल, जुर्माना और 5 लाख मुआवजा भरवाने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शिशिर राज ढकाल की इजलास ने आज इस मामले में सजा सुनाई। इसी पौष 13 गते गौशाला 26 को बलात्कार के आरोप में लामिछाने को अदालत ने दोषी ठहराया था। उसने पीड़ित की खराब आर्थिक स्थिति का कम फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार करने की बात जिला अदालत में ठहर की है। नेपाल में इस वर्ष धान का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.33% से अधिक है। आज हुई प्रतिनिधि सभा की कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की बैठक में कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री डॉ. वेदुराम भुसाल ने कहा कि इस वर्ष किसानों को समय पर ही रासायनिक मल उपलब्ध कराए जाने और मौसम की अनुकूलता के कारण धान उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। मंत्री डॉ. भुसाल ने कहा कि प्रविधि का प्रयोग और सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने पर ही नेपाल में खाद्य तथा नकद फसलों में नेपाल आत्मनिर्भर बन पाएगा। समिति ने 15 लोगों की टोली को बंदर पर नियंत्रण की ट्रेनिंग के लिए भारत के हिमाचल प्रदेश भेजने का निर्णय किया है। ये जानकारी सभापति डॉ. आरजू राणा देवबा ने दी है। कर्मचारी संचय कोष ने आगामी फागुन 1 गति से संचयकर्ता दंपति को सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। कोष ने आज सूचना जारी करते हुए कहा है कि इससे पूर्व संचयकर्ता को मात्र उपलब्ध कराई जा रही ये सुविधा अब संचयकर्ता दंपति को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि कोष के द्वारा विक्रम संवत 2076 साल से संचयकर्ता को अस्पताल में इलाज के लिए साधारण रोग में अधिकतम 1 लाख और निर्धारित 12 घातक रोगों में सेवा अवधि भर में 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध कराता आ रहा है। आगामी फागुन 1 गति से कोष संचयकर्ता के पति या पत्नी को भी ये सुविधा मुहैया कराएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भूटान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। पीडीपी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद उसकी नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पीडीपी पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग टोपके की पार्टी है। भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने बताया कि पीडीपी ने 47 नेशनल असेंबली सीटों में से 30 सीटें जीती हैं और भूटान टेंडरल पार्टी को 17 सीटें हासिल हुई हैं। पीडीपी को जीत के बाद शेरिंग टोपके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भूटान चुनाव में करीब 5 लाख मतदाताओं ने भूटान टेंडरल पार्टी और पीडीपी के 94 उम्मीदवारों में से अपने संसद सदस्यों का चयन किया है। पीडीपी और बीटीपी के अलावा बाकी 3 अन्य पार्टियों का चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं हो पाया, जिनमें सत्ताधारी वामपंथी ट्रक न्याम रूप शोक बो पार्टी भी शामिल थी। बता दें कि सन 2008 में भूटान में पारंपरिक राजशाही खत्म होने और संसदीय व्यवस्था आने के बाद से देश में ये चौथा आम चुनाव है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल और नेपालियों के हित एवं आर्थिक विकास के पक्ष में भारत के साथ समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का कथन, यौन शोषण तथा व्यक्ति को जबरन गुम करने के आरोपित राम बहादुर बोमजन को प्रहरी केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने किया सार्वजनिक। बलात्कार मामले में दोषी पाए गए क्रिकेटर संदीप लामिछाने को 8 साल की जेल, जुर्माना और 5 लाख क्षतिपूर्ति भरवाने का जिला अदालत काठमांडू ने दिया आदेश। और भूटान में कल संपन्न चुनाव में लिबरल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला स्पष्ट बहुमत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।